हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। काव्या का कमरा। रात के लगभग 2 बज गए थे, लेकिन काव्या सोने का नाम नहीं ले रही थी। वो करण को तरह तरह की बातें करके परेशान कर रही थी। कभी अपनी प्री स्कूल की बातें शेयर कर रही थी, तो कभी कहानियाँ सुनाने को कह रही थी। कभी कभी तो वो करण के साथ मिलकर अपनी मम्मी की बुराई भी करती और हंसती। ये सब देखकर करण को बहुत अच्छा लग रहा था। वो काव्या की सारी बातें बड़े ध्यान से सुन रहा था और उसे पूरा ध्यान दे रहा था। वो उसकी बहुत देखभाल करता था और उसे अपनी बेटी की तरह प्यार करता था। करण को काव्या से एक अनोखा लगाव महसूस होता था। वो उसे कभी उदास या नाराज नहीं देख पाता था, इसलिए उसकी खुशी के लिए वो उसकी हर बात मान लेता था। शिविका भी कमरे में एक कुर्सी पर बैठी थी, लैपटॉप लेकर। वो कुछ काम कर रही थी, लेकिन उसका ध्यान काव्या और करण पर भी था। वो उनकी बातें सुन रही थी। उसने देखा कि करण को नींद आ रही थी, लेकिन काव्या सोने का नाम नहीं ले रही थी, जिसकी वजह से करण भी जागा हुआ था। ये देखकर शिविका ने अपना लैपटॉप बंद किया और उनकी ओर आते हुए कहा, चलो काव्या, बस बहुत हो गया, सो जाओ अब, बहुत देर हो गई है, तुम फिर सुबह नहीं उठोगी। काव्या ने उसकी तरफ देखा और बोलना चाहा, लेकिन मम्मा मुझे नींद नहीं। लेकिन शिविका की नज़रों से डरकर काव्या आगे कुछ नहीं बोल पाई। उसने मदद के लिए करण की तरफ देखा। करण भी शिविका को देखकर कुछ नहीं बोलना चाहता था। वो पहले ही काव्या का बहुत साथ दे चुका था और अब उसे भी नींद आ रही थी। लेकिन चूंकि काव्या सो नहीं रही थी, इसलिए उसने शिविका को ही उसे संभालने दिया। शिविका ने आंखें दिखाकर काव्या को किसी तरह बिस्तर पर सुला दिया और उसे कंबल उढ़ाकर जाने लगी। लेकिन फिर उसने करण को देखा, जो काव्या के सिरहाने बैठा जम्हाई ले रहा था। शिविका ने करण से कहा, रात भर यहीं बैठे रहने का इरादा है क्या? जाओ मेरे कमरे में या गेस्ट रूम में जाकर सो जाओ। करण ने जवाब दिया, नहीं, मैं तो घर ही चलता हूँ। करण उठते हुए ये बात बोला, लेकिन काव्या ने उसकी बात सुन ली थी। वो पूरी तरह सोई नहीं थी, बस आंखें बंद करके लेटी हुई थी। उसने करण का हाथ पकड़ते हुए कहा, नहीं करण, तुमने आज यहाँ मेरे साथ रुकने का वादा किया था ना, तुम अपना वादा नहीं तोड़ सकते। काव्या की फिर से जिद भरी आवाज सुनकर शिविका ने उसे डांटते हुए कहा, काव्या तुम सोई नहीं हो अब तक, छोड़ो करण का हाथ, ये क्या बदतमीजी है, ये बिल्कुल मर्यादा नहीं है, वो यहाँ कैसे सो पाएगा। काव्या ने जवाब दिया, वैसे ही जैसे आप सोती हो, और वैसे भी मेरा बिस्तर कितना बड़ा है, मामा आप भी यहाँ आओ ना, मुझे आपके बिना नींद नहीं आती। शिविका अब थोड़ी चिढ़ी हुई बोली, क्या है काव्या, तुम चुपचाप सो रही हो या नहीं। इतना बोलते ही शिविका गुस्से में आ गई तो करण ने उसे हाथ दिखाकर इशारे से रुकने को कहा। शिविका ने करण की बात मान ली और आगे कुछ नहीं बोली। तभी करण ने प्यार से काव्या के बालों पर हाथ फेरते हुए कहा, कहीं नहीं जा रहा हूँ मैं, तुम सो जाओ आराम से, मैं यहीं हूँ और तुम्हारी मम्मी भी। शिविका उसकी बात काटते हुए बोलना चाही, लेकिन करण ने पलकें झपकाकर उसे इशारा किया। शिविका आगे कुछ नहीं बोली। करण ने उसे काव्या के दूसरी तरफ लेटने के लिए कहा, क्योंकि काव्या भी उसे बुला रही थी। इस पर शिविका ने कुछ नहीं कहा। काव्या को उसकी आदत थी और वो ज्यादातर उसके साथ ही सोती थी, इसलिए आखिरकार वो भी आई और काव्या के दूसरी तरफ लेट गई। करण जहाँ बैठा था उसी तरफ आधा लेट गया, लेकिन वो पूरी तरह आरामदायक नहीं था, क्योंकि शिविका भी उसके साथ बिस्तर पर थी। दोनों काव्या की तरफ मुंह करके लेटे हुए थे, जिससे उनकी नजरें मिल रही थीं। अपनी जिद पूरी होते देख काव्या बहुत खुश हो गई। करण और शिविका दोनों उसके दोनों तरफ लेटे हुए थे। उसने दोनों का हाथ उठाकर अपने ऊपर रख लिया। शिविका ने हल्के से उसे सहलाया और उसके सिर पर हाथ फेरा। कुछ ही देर में काव्या सो गई। करण अभी भी असहज सा लेटा हुआ था, लेकिन फिर भी वो सो गया, क्योंकि उसे पहले से ही नींद आ रही थी। शिविका ने अपने बगल में सोते हुए उन दोनों को प्यार भरी नजरों से देखा। इतनी देर में पहली बार उसके चेहरे पर मुस्कान आई। वो करण को भविष्य में अपने और काव्या के साथ एक परिवार की तरह कल्पना करने लगी। उसे लगा कि करण उनकी इस छोटी सी प्यारी फैमिली में बहुत अच्छे से घुल मिल गया है और अब उनकी जिंदगी में कोई समस्या नहीं आएगी। उन दोनों की तरफ देखकर ये सब सोचते हुए शिविका को कब नींद आ गई उसे पता ही नहीं चला। दूसरी तरफ कार में ऋषभ और समर क्लब से बाहर निकले काफी देर हो गई थी, लेकिन ऋषभ अभी भी कार चला रहा था। उसने शराब पी रखी थी, इसलिए उसे रास्ता ठीक से समझ नहीं आ रहा था। समर तो पहली बार इस इलाके में आया था, इसलिए वो रास्ते से पूरी तरह अनजान था, लेकिन उसे ऋषभ पर भरोसा था। जिस आत्मविश्वास से ऋषभ ने उसे घर छोड़ने के लिए कहा था, समर को लगा कि उसे कम से कम मुख्य सड़क और शहर का रास्ता तो पता होगा। इसलिए वो चुपचाप बैठा हुआ था। कार में खामोशी छा गई थी। दोनों में से कोई कुछ नहीं बोल रहा था। आखिरकार ऋषभ ने पूछा, कहाँ है तुम्हारा घर? कुछ बताओगे? कहाँ छोड़ूं तुम्हें? समर ने उसकी बात को गंभीरता से नहीं लिया। क्या मतलब कहाँ है? तुम्हें अपने होने वाले जीजा का घर भी नहीं पता है क्या? ऋषभ ने भी हल्के में कहा, मुझे तो जीजा के बारे में भी बाद में पता चला, तो उसके घर का पता क्या पता होगा? वैसे कोई बात नहीं, अगर तुम्हें मेरे साथ रात भर लॉन्ग ड्राइव पर चलते रहना है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। बस जहाँ पेट्रोल पंप आए बता देना, पेट्रोल रिफिल करवा लूँगा। ऋषभ की बात पर समर गंभीर हो गया। ये कोई मजाक का वक्त है, रात के इस वक्त चुपचाप घर चलो ना, रास्ता मैं बताता हूँ, तुम पहले मुख्य शहर तो पहुँचाओ। ऋषभ ने उसकी तरफ देखा और कहा, मैं मजाक नहीं कर रहा, मुझे तुम्हारी संगति पसंद है। फिर तुम चाहे मुझे नज़रअंदाज करो, मुझसे रूखी बात करो या मुझे अकड़ू घमंडी जो भी समझो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अपनी बात बोलकर ऋषभ समर की तरफ हल्का सा मुस्कुराया। समर ने फिर से बच्चों की तरह मुंह फुलाते हुए कहा, लेकिन मुझे फर्क पड़ता है। जो कुछ भी तुमने आज किया ना ऋषभ, वो बहुत ज्यादा था। सच में मेरे दोस्त मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे? इस बात पर ऋषभ ने कार वहीं रोक दी। वो लोग एक सुनसान सड़क पर थे जहां दोनों तरफ पेड़ लगे हुए थे और दूर पर कॉलोनी जैसे घर नजर आ रहे थे जो सड़क से काफी अंदर थे। उस सड़क पर कोई रोड लाइट नहीं थी, सिर्फ गाड़ी की हेडलाइट में थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा था। उनके अलावा कोई भी वहां नजर नहीं आ रहा था। कार रुकते ही ऋषभ थोड़े गुस्से में समर की तरफ देखकर बोला, क्या तुम गंभीर हो? तुम्हें इस बात की चिंता है कि वे तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे? और तुम सच में उन लोगों को अपना दोस्त मानते हो? देखो, दोस्त ऐसे नहीं होते। वे लोग तुम्हें सिर्फ नीचा दिखाना चाहते थे और तुम्हें ये समझ नहीं आ रहा था। बिल्कुल ही नासमझ छोटे बच्चे हो क्या? समर ने ऋषभ से नजरें चुराते हुए कहा, मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ और मैं नहीं मानता कि वे मेरे दोस्त नहीं हैं। वे मुझे नीचा नहीं दिखा रहे थे, वे तो बस ड्रिंक ऑफर कर रहे थे और मैं ही पहले मना कर रहा था। इसमें कैसा नीचा दिखाना? तुम ज्यादा ही ज्यादा सोच रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं था। ऋषभ ने उसे समझाने की कोशिश करते हुए कहा, तुम्हें भी अच्छी तरह पता है कि वे लोग क्या कर रहे थे। अगर तुम ड्रिंक नहीं पीते तो वे तुम्हें डरपोक बुलाते, और अगर पी लेते तो फिर जो भी शर्मिंदा करने वाली हरकतें तुम करते उसके लिए वे लोग बाद में तुम्हारा मजाक उड़ाते, और उन अमीर लोगों के लिए ये सब बस मनोरंजन होता है।
समर अच्छी तरह समझ रहा था कि ऋषभ सही कह रहा था, लेकिन उस वक्त उसने इन बातों के बारे में बिल्कुल नहीं सोचा था, इसलिए वो अभी भी उस बात को मानने से इनकार करता हुआ बोला, नहीं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला था। और रही बात अमीयों की, तो तुम भी तो हो, क्या तुम भी मेरे साथ ऐसा करोगे? इस बात पर ऋषभ थोड़ा मायूस हो गया। ओ कम ऑन, सीरियसली समर, तुम्हें मैं उन लोगों जैसा लगता हूँ क्या? तुम मुझे उन लोगों के साथ कैसे कंपेयर कर सकते हो? मैं तुम्हें इतने समय से जानता हूँ और तुम्हारे भाई की शादी भी मेरी बहन से होने वाली है, तो फिर तुम मेरी जिम्मेदारी हुए ना? ऋषभ की गहरी बातें सुनकर समर ने ताना मारा, अपनी जिम्मेदारी तो पहले निभाओ, अभी भी कितनी शराब पी रखी है तुमने, देखो तुम्हारी आंखें भी लाल हैं, क्यों करते हो तुम ऐसा? बातें तो इतनी समझदारी भरी कर लेते हो, थोड़ा समझदार खुद के बारे में भी बन जाओ। ऋषभ ने तुरंत सफाई दी, मुझे क्या हुआ है, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, इतनी भी शराब नहीं पी मैंने, बस 2-3 शायद 5-6 शॉट्स ही लिए हैं और वो इतने ज्यादा नहीं होते, लेकिन मैं बिल्कुल ठीक हूँ। समर ने कहा, अच्छा ठीक है, सफाई मत दो, पहले मुझे मेरे घर पहुँचा दो, बस इतना ही काफी है। और यहाँ कार क्यों रोकी है तुमने? कितनी अजीब सी जगह है। इतना बोलते हुए समर ने खिड़की से बाहर देखा, उसे कुछ भी ठीक नहीं लगा। ऋषभ कार स्टार्ट करने लगा था। क्रमशः